कल क्या चर्चा की थी हमने?
हाँ, कल क्लास हुई थी। क्या डिस्कस किया था? कुछ एक दो पॉइंट। नोटबुक है आपके पास? नोट बना रहे हैं? क्या डिस्कस किया था हमने?
प्रैक्टिकल सर और मॉर्निंग प्रोग्राम ना, हमें सिंपल हैबिट से मतलब।
हाँ, तो रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत आवश्यक है हमारे आध्यात्मिक जीवन में।
जो स्पॉन्टेनियस लव है ना कृष्णा का, वो मॉर्निंग प्रोग्राम से हम काफ़ी डेवलप कर सकते हैं। उन्होंने बताया था कि है तो मॉर्निंग प्रोग्राम पर है, वैसे जो लविंग
डिवोशनल सर्विस
स्टार्टिंग में आपने बताया फेसिंग आई प्रॉब्लम, बट इट इज साथेस्ट अगर हम संग रहेंगे तो।
हाँ, तो जैसे आज प्रभु जी भी क्लास में कह रहे थे कि हम एक साथ चैंटिंग करते हैं तो सामूहिक, हाँ, कितना शक्ति होता है सामूहिक एक्टिविटीज़ में। प्रभुपाद वो उदाहरण देते थे उस लकड़ी का, कि एक लकड़ी है तो वो इजीली कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन ऐसे 10-12 लकड़ियाँ एकत्रित आ जाए छोटी छोटी तो एक बलवान व्यक्ति उनको नहीं तोड़ पाता। तो उसी प्रकार संघ में शक्ति है। किसमें? संघ में। तो हमें सामूहिक रूप से एक साथ रहकर आध्यात्मिक कार्यकलाप करने चाहिए, जैसे चांटिंग है, डांसिंग है, फास्टिंग है, फिस्टिंग है, हाँ, सेवाज है। तो इस प्रकार से हमें शक्ति मिलेगी और फिर माया इजीली हमें तोड़ नहीं सकती, अन्यथा हम टूट जाते हैं जब अकेले होते हैं। और टूटने का मतलब क्या है कि हम जो आध्यात्मिक जीवन के कार्यकलाप हैं वो हम नहीं कर पाते। इसलिए आवश्यक है, तो आज मैं जस्ट कुछ समय के लिए चर्चा करूँगा कि क्या ऐसे रीज़न है कि कोई जो भक्त हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के बाद वो गिर जाता है, मोमेंट को छोड़ के चला जाता है। तो पास्ट जो ऐसी घटनाएं हुई हैं या कई साल गुजरे हैं अलग अलग भक्तों के जो रियलाइजेशंस हैं उनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि कोई जो भक्त है वो आध्यात्मिक जीवन से गिर जाता है, फॉलिंग डाउन फ्रॉम स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन को जोर शोर से पकड़ता है और बहुत अद्भुत कार्य करता है, मे बी वो वंडरफुल कीर्तनिया हो सकता है, बुक डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, लेक्चर देता है, हाँ, प्रीच करता है, कॉलेज प्रीचिंग करता है, तो लेकिन देखा गया है कि कुछ साल के बाद, हाँ, वो कई साल जब बीतते हैं तो आध्यात्मिक जीवन से वो चला जाता है। और नियमों का पालन करना, हरि नाम का जाप करना, ये सब क्या होता है, छूट जाता है। तो इतनी चीज़ें कर लेता है वो मोमेंट पे आने के बाद, हाँ, लेकिन फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण वो ये जो कृष्ण भावना है उससे गिर जाता है या आध्यात्मिक जीवन से कैसे गिर जाता है। तो आप देखेंगे भगवद गीता है, भगवद गीता में भी अर्जुन, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि हे कृष्ण, कि कोई व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है और वो गिर भी जाता है तो उसके साथ क्या होगा। हाँ, कच्ची अठवा अध्याय में यहाँ विक्रमण तो है, लेकिन भगवान कहते ना कि वो भक्त के योगी के घर में जन्म लेता है, तो ये सारी चीज़ें कृष्ण वर्णन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन भी ये जो आध्यात्मिक जीवन से फॉल डाउन होता है उसके बारे में कृष्ण से चर्चा करते हैं। ये चर्चा कोई हम नई नहीं है, ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा था कृष्ण से और कृष्ण भी उसका वर्णन देते वर्णन करते हैं। जी, याद नहीं आ रहा कौन से चैप्टर में है। हाँ, मिल गया। तो अर्जुन कहता है 7वें अध्याय में 37 श्लोका, आयति श्रद्धा योपेतो योगा चलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धि। का गतिम कृष्ण गच्छते, कि हे कृष्ण क्या होती है ऐसे योगों की गति, क्या होती है जो असफल हो जाते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। हाँ, क्योंकि वो विचलित हो जाते हैं प्रैक्टिस करते करते, भौतिकता से विचलित हो जाते हैं, भौतिक एसोसिएशन से विचलित हो जाते हैं, उनका मन भौतिक चीज़ों में लग जाता है, तो उनकी क्या गति होती है। हाँ, कहते कि हे कृष्ण कि ऐसा जो भ्रष्ट हुआ व्यक्ति है वो तो उस बादल के समान है, हाँ, जो छिन्न भिन्न हो जाता है, कहाँ चला जाता है हवा के साथ। तो लेकिन कृष्ण कई चीज़ें बताते हैं, कि कृष्ण कहते हैं कि जो असफल योगी है वो पवित्र आत्माओं के घर में जन्म लेता है या फिर धनवान के घर में जन्म लेता है, कि अगले जीवन में उसको बहुत ईजी हो जाता है कृष्ण भावना का अभ्यास करना। तो हमें ये जानना होगा कि फॉल डाउन का मतलब क्या है। आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक जीवन को छोड़ने का मतलब है कि जो आध्यात्मिक रूप से गिरने का मतलब है कि वो जो गुरु के आदेश हैं, स्पेशली श्रील इस मोमेंट में आने के बाद श्रील प्रभुपाद ने जो स्टैंडर्ड प्रोसेस दिया है उसको फॉलो करना भूल जाता है या फॉलो नहीं करता, हाँ, तो वो है गिरना, कि चांटिंग छोड़ देना, चार नियमों का पालन नहीं करना, मॉर्निंग साधना का या रूल्स रेगुलेशन का पालन नहीं कर पाता। तो ये मैं जो गिरना है ये एक प्रकार से बहुत ही भयानक है, क्योंकि ये हिस्ट्री में ऐसी कई घटना हुई है, कई ऐसे रीज़न हैं कि व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आता है और बहुत अच्छे अच्छे अद्भुत कार्य करता है मोमेंट में, लेकिन देखा जाता है कि कुछ साल के बाद वो अपने पद से पदच्युत हो जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है। तो आप बता सकते हैं क्यों कोई व्यक्ति गिर सकता है आध्यात्मिक जीवन से, कुछ रीज़न फॉल डाउन क्यों हो सकता है। वैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि हम हर क्षण फॉल डाउन होते हैं, हाँ, क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे कृष्ण को भूलना मतलब माया में होना है ना, तो हम हर समय गिर रहे हैं। तो लेकिन क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भौतिक जगत में फिर से खींच के ले जा सकती है। हाँ, चैंटिंग और रीडिंग नहीं करें रेगुलर, हाँ,
तो उम्मीदें ज़्यादा रखना अपने आप से किसी से और उम्मीदें ना पूरी होना तो बंदा निराश हो गया
नहीं, उसको कहते सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन, हाँ, एक्सपेक्टेशन जो है एक्सपेक्ट करना किसी से सबसे ज़्यादा मिजरेबल कोई है वर्ल्ड में जो एक्सपेक्ट करता है चीज़ें और वो नहीं मिलती तो सबसे ज़्यादा दुखी वो व्यक्ति होता है जो एक्सपेक्ट करता है। ये भी है निराशा, फ्रस्ट्रेशन, आध्यात्मिक जीवन में फ्रस्ट्रेशन, और कुछ रीज़न भक्तों का संग नहीं करता। हाँ, जैसे वो श्लोक आज हमने याद किया था, विषया विनिवर्तन्ते निराहर्ष देहिना रसवर्जम रसोपेश परम दृष्ट्वा निवर्तते, हायर टेस्ट मिलेगी तो लोअर टेस्ट को भूल जाएगा। तो यहाँ आकर हम हायर टेस्ट प्राप्त नहीं कर रहे हैं। हायर टेस्ट क्या है, जो हमें प्रिंसिपल सिद्धांत दिया है, जो एक्टिविटीज प्रदान की हैं उसको सिंसियरली फॉलो करेंगे तो हायर टेस्ट मिलेंगे, और फिर आने तक फिर यहाँ भी वो टेस्ट नहीं मिल रहे स्पिरिचुअल, तो लोअर टेस्ट के लिए फिर से हमारा मन भागेगा। और क्या हो सकता है, मान सम्मान की इच्छा करना, वो भी हमारे पतन का कारण होता है। हाँ, जैसे कल मैंने कहा था कि हम मोमेंट में आते हैं और दो तीन ग्रंथ पढ़ लेते हैं, कुछ संग कर लेते हैं और कुछ लेक्चर्स दे देते हैं तो लगता है कि मैं सब कुछ जान गया हो। इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उत्साह में अनर्थ कहते हैं। तो वो सोचता है कि मैं तो सब कुछ जान गया हो, उसकी स्थिति जैसे मैंने कल कहा था कि उस बच्चे के समान है जो फिफ्थ क्लास में फर्स्ट आता है और वो सोचता है कि पूरे वर्ल्ड का विद्वान मैं ही हूँ। तो ये भावना शुरुआत के समय में होती है जब हम कृष्ण भावना में आते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि मान सम्मान और फिर इसकी अभिलाषा हम करते हैं तो ये हमें गिरा देता है आध्यात्मिक जगत से। लेकिन दूसरों के नज़रों में हमें सम्मान मिल रहा होगा, दूसरे लोग हमें रिस्पेक्ट दे रहे होंगे, लेकिन हम कृष्ण के नज़रों में उतने ये नहीं है। क्या है? हाँ, कृष्ण की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं है। और क्या हो सकता है? तो ऐसे कई रीज़न हैं। हाँ, जैसे मैं कुछ रीज़न लिख रहा था तो उनमें से कुछ सुनाता हूँ कि ओवरली अटैच टूवर्ड्स मटेरियल थिंग्स, हाँ कि भौतिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट डेवलप करना भौतिक चीज़ों में आध्यात्मिक जीवन में आते हैं। और दूसरा एक है स्ट्रांग मटेरियल डिज़ायर, कोई भौतिक स्ट्रांग इच्छा हमारे हृदय में होती है तो वो भी हमें खींच के वापस ले जाती हैं, खींच के ले जाती हैं, है ना। भौतिक जैसे जो धन के प्रति हमारे बहुत स्ट्रांग इच्छा है, या स्त्री के प्रति है, फैमिली के प्रति है, हाँ, या और भौतिक चीज़ हमें प्राप्त करना चाहते हैं उसके प्रति है, तो वो मटेरियल भौतिक इच्छा भी हमें खींच के ले जाती है। और एक है विक साधना, ये जो साधना है मॉर्निंग साधना है वो क्या होना, विक होना। विक को क्या कहेंगे? कमज़ोर होना। हाँ, वो भी कमज़ोर, हमारी साधना कमज़ोर होते हैं तो हम वीक हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी लगता है एक्चुअली हमें, हाँ देखो, माया इज एक्चुअली यू नो इज सो चलाक कि हम, और मतलब आप सोचो कि आप पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो और ये भी भावना आ जाती है, देखो मैं ही सबसे अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, ऑल दिस ब्रह्मचारीज आर यूजलेस, वो बेकार ब्रह्मचारीज है, मैं ही बिल्कुल अच्छा हूँ, देखो पूरे वहाँ मैं बिल्कुल भागवतम क्लास से हिलता नहीं हूँ, मंगल आरती में नहीं हिलता, चैंटिंग में नहीं हिलता, नो प्रसादम सर्विंग तक रहता हूँ मैं, बाकी देखो कहाँ घूमते रहते क्या करते हैं। तो माया ये भी भावना डाल देती है और ये ऑफेंसिव एटीट्यूड डेवलप होता है इससे, तो उससे ऑफेंसलेस चैंटिंग नहीं कर सकते, तो ऑफेंसिव चैंटिंग होता है फिर हमारा। तो यह है कि वीक साधना, कमज़ोर साधना, मॉर्निंग साधना होना, तो वो भी फिर मॉर्निंग साधना कमज़ोर हो जाती है, वैसे भौतिक इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, वोल्केनो, ज्वालामुखी कैसे निकलते हैं, ऐसी भौतिक इच्छाएं निकल रही हैं। तो इस प्रकार से ऐसे कई रीज़न हैं। और अलोन, अलोन रहना मतलब क्या कहते हैं, हाँ अकेले रहना, डिवोटीज के साथ हमें फ्रेंडशिप डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि मोमेंट में देखा गया है जितने भी डिवोटीज ज्वाइन करते हैं ब्रह्मचारी जीवन, और वो या तो गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं वापस, हाँ, तो कई रीज़न से, ये सारे रीज़न भी हैं, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण रीज़न वो है लोनलीनेस। क्या? लोनलीनेस, अकेले रहना, अलोन, या लोनलीनेस को क्या कहेंगे हिंदी में, अकेलापन। तो भक्तों के साथ अब मित्रता, ऐसी मित्रता नहीं, ऐसी मित्रता नहीं रखनी कि आपने ऐसे इक्वल से फ्रेंडशिप की बात आती है तो वो फ्रेंड आपका दुश्मन बन जाए, मतलब हम इतने ऐसी फ्रेंडशिप रखते हैं कि उस फ्रेंड से कभी कोई कृष्ण कथा नहीं, कभी कुछ नहीं। हाँ, तो रिसेंटली मैं अभी पढ़ रहा था तो उसमें इक्वल फ्रेंडशिप की बात आ रही थी, तो वह वर्णन आता है कि इक्वल फ्रेंडशिप का मतलब कि स्पिरिचुअल जो फ्रेंडशिप है वो डेवलप करनी चाहिए, और उस फ्रेंडशिप का प्लेटफॉर्म क्या है, कृष्ण कथा। हाँ, जब भी आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में एक रिस्पेक्ट भी होता है, जैसे ये टॉक नहीं होता, वो एक दूसरे को इस ऐसे भी नहीं बुलाते, अमित इधर आओ, नहीं अमित प्रभु, हाँ ये है स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप कि नितिन प्रभु, नितिन कहें अमित इधर आओ रे, या हे नितिन क्या कर रहे हो। तो ये फ्रेंडशिप क्या है, तुरंत हमारी चेतना को और सबको भौतिक धरातल पर लाती है। तो हमारी इक्वल फ्रेंडशिप का मतलब है कि हम जितना नजदीक है उतना ही हमारे बीच में रिस्पेक्ट है। प्रभुपाद का जैसे रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है वैसे ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आदर होना चाहिए हमारे फ्रेंडशिप में भी। हाँ
रामजी प्रभु जी कौन है?
कौन है? कोई नहीं,
तो नया भक्त आ रही
है अभी नहीं है बोले यहाँ कोई, 12 बजे तक नहीं है।
उससे प्रभु जी बहुत डिफरेंस ही ज़्यादा है और कहीं ना कहीं हम लोग अभी इंटेलेक्चुअल होते हैं उनके अंदर ये
नहीं। अच्छा है आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए हाँ श्रद्धा, लेकिन उससे एनवी ना आ जाए हमारे हृदय डिवोटीज डिवोटीज के प्रति, तो वो आध्यात्मिक जीवन के लिए डेंजर है। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका के नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि लोभ साधु संगे हरि कथा, आपको ग्रिड है तो ग्रिड किसके प्रति रखो, कृष्णों का एसोसिएशन कृष्ण कथा। और ऐसे वो जो 6 चीज़ें हैं उनको कहते हैं, लेकिन कहते एनवी को नहीं लगा सकते कृष्ण की सेवा में। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं उसको तो हमें खुद प्रयास करना होगा हमारे हृदय से उसको निकालने के लिए। और एनवी को निकाल सकते जैसे कहा था कि वैष्णवों को सर्व करने से। हाँ और जिन डिवोटीज के प्रति हमें एनवीनेस महसूस होता है हाँ, तो किसी न किसी प्रकार से उनको सर्व करना शुरू करो। जैसे मुझे किसी से एनवी है तो मैं भी वो डिवोटी दूर है तो मैं किसी के द्वारा प्रसाद भेज दो तो इस, या वो डिवोटी नहीं है तो दूसरे डिवोटीज के बीच में उसका कोई क्वालिटी को मैं बताओ प्रशंसा करो। क्या नफरत नहीं, लेकिन फिर भी नहीं आया वो हार्डली नहीं, क्योंकि वो इतना इजी नहीं है कि हमारा हृदय करेगा उस व्यक्ति की तारीफ करने की भावना हमारे हृदय में नहीं आएगी कभी भी। लेकिन फिर भी हम यदि भक्तों के वैष्णवों के बीच ऐसे अकेले नहीं भक्तों के बीच उसके बारे में गुणगान करते उसके क्वालिटी का तो धीरे धीरे और सीनियर वैष्णवास को हम सर्व करते हैं तो ये जो एनवी है वो कम होने लगती है ख़त्म हो जाती है। एनवी का मतलब ईर्षा। हाँ तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था कि लोनलीनेस, क्योंकि मोमेंट में आने के बाद 30-35 एज ग्रुप होता है, अब 40 तक आप बिल्कुल उत्साह से रहते हो कृष्ण भावना में। और जैसे ये लोनलीनेस आप रखते हो अकेले अकेले रहना, भक्तों से मित्रता नहीं डेवलप करना, और ऐसे इक्वल फ्रेंडशिप की बात कर रहे थे तो इक्वल फ्रेंडशिप ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो बाकी चर्चाओं में लगे हुए हैं। हाँ मतलब इक्वल फ्रेंडशिप का मतलब है कि वो डिवोटी स्मरण दे हर समय कृष्ण का, हर समय कृष्ण से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में एक दूसरे को लगाएं। नहीं तो वहाँ वर्णन आता है कि इससे अच्छा है कि आपकी जो फ्रेंड्स, इससे अच्छा है कि आपको कोई शत्रु हो, क्योंकि ऐसे फ्रेंड से बड़ा शत्रु कोई नहीं है जो फ्रेंड आपको ये नहीं करता कृष्ण कथा और इन एक्टिविटीज़ में एंकरेज नहीं करता या डिस्कस नहीं करता, तो ऐसी फ्रेंडशिप आवश्यक नहीं है। तो इसलिए फ्रेंडशिप होनी चाहिए भक्तों के बीच, लेकिन वहाँ आदर बहुत आवश्यक है एक दूसरे में। हाँ आध्यात्मिक रूप से जो मित्रता है हाँ तभी वो अच्छी मित्रता कहलाएगी। अन्यथा क्या होता है कि जो ब्रह्मचारी जीवन में व्यक्ति 40 साल की आयु तक जाता है, जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ 29 या 30 साल का हूँ, तो 40 साल की आयु तक डिवोटी जाते हैं और जब अच्छे भक्तों से उनकी मित्रता नहीं है हाँ तो क्या होता है, या किसी सुपीरियर के पास वो अपना हृदय रेगुलर ओपन नहीं करता है हाँ और रेगुलर नहीं है तो इससे अकेलापन लोनलीनेस आता है उसके हृदय में। और 40-35 साल के बाद उसको लगता है कि मुझे नीड है अभी कोई फ्रेंडशिप की, हाँ किस कौन चाहिए मुझे, अभी स्त्री की आवश्यकता है, क्योंकि स्त्री के पास जो पुरुष है वो अपना हृदय हर समय ओपन करता है। कोई बात है जो हस्बैंड है कभी अपने हृदय में मन में नहीं रख सकता, हर एक चीज़ गुह्यते गुह्यतम चीज़ें वो प्रकट करता है अपने स्त्री के पास। तो इस कारण बल्कि वो सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं होता इतना उस समय जो ब्रह्मचर्य उस एज में जाता है, उस भावना से मैरिज की ओर नहीं दौड़ता, ये एक रीज़न होता है लोनलीनेस। तो इसलिए आपस में वंडरफुल रिलेशनशिप चाहिए, और ये कैंसर का काम करती है, ये कैंसर का काम करता है ये जो लोनलीनेस है। हाँ, यदि हम भक्तों से प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं रखते तो ये कैंसर का काम करता है डे बाय डे। एक बार कैंसर आपको शुरू हो जाए और आप उसको रिवील नहीं करोगे डॉक्टर के पास, है ना, तो कितना कठिन है। एक सर्वोच्च स्टेज पर जाएगा, बहुत बड़ी स्टेज पर, क्योर होना नहीं, कुछ लक्षण ही दिख रहे हैं तो तभी हमें डॉक्टर के पास ओपन करना चाहिए। तो इसलिए उस सुपीरियर डिवोटीज आवश्यक है कि जिनके पास हम रिवील करें अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए जो कमियां हैं, और तभी फिर तो ये एक रीज़न है कि हम ये एक रीज़न है जिसके कारण जो हम आध्यात्मिक जीवन से अलग हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा नो वन ट्रस्टवर्दी पर्सन, ये भी है कि हमारे जीवन में कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं होता, पर्सन डिवोटी फेथफुल डिवोटी जिनसे हम रेगुलर एसोसिएट करते हैं, जिनसे रिवील करते हैं। रिवील मतलब अपना जो हृदय है खोलते हैं, अपनी समस्या प्रेजेंट करते हैं। और यही तो बात रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते, क्या कहते हैं, लगाती प्रतिग्रहणाती गुह्यम आख्याति पृच्छति, पूछता है सुनता है। हाँ, तो ये इस प्रकार से होना चाहिए, नहीं होता तो फिर आध्यात्मिक जीवन से गिरता है। और एक है रीज़न बैड एसोसिएशन, भयानक जो डिजीज़ है, बैड एसोसिएशन से सारी चीज़ें आपकी आपको नीचे की ओर ले जाती हैं। हाँ, बैड एसोसिएशन असत्संग, हाँ, या भक्तों के वेश में भी जो आसुर है उनका संग करना, हाँ, या फिर जो नास्तिक लोग हैं, भौतिकतावादी लोग हैं जिसके जीवन का लक्ष्य स्त्री और धन है, ऐसे व्यक्तियों का संग में हम रमे रहना, तो वो भी हमें नीचे लाता है। नेक्टर ऑफ डिवोशन में रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे कृष्ण, वो कई पुराणों से कोट करते हैं कि मैं जंगल में फायर के बीच रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बैड एसोसिएशन में नहीं रहना चाहता। ये पुराणों में आता है, रूप गोस्वामी कोट करते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, कई सारे एग्जाम्पल देते हैं कि मैं शेर के बीच में रह सकता हूँ लेकिन मुझे बैड एसोसिएशन में नहीं रहना, या नास्तिकों का या आस्तिकों नास्तिकों का संग नहीं करना है। तो और ये भी है, और कई बार और भी रीज़न है कि कीपिंग लेग्स ऑन बोथ क्या टू बोट्स, हाँ, इस प्रभुपाद बोट पर भी एक पाव है और दूसरी बोट पर भी एक पाव है, तो फिर वो गिर जाता है जो हम आध्यात्मिक जीवन से इस कारण में भी गिरते हैं। और एक रीज़न है वो है वैष्णव अपराध, हाँ, तो ये तो बिगेस्ट डिफिकल्टी है कि हम वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं आध्यात्मिक जीवन से, तो उसकी तुलना रूप गोस्वामी या चैतन्य महापुरुष शिक्षा देते हैं रूप गोस्वामी को, तो तब कहते हैं कि वो हाथी मत हाथी के समान है। मतलब जो भक्ति हम कर रहे हैं अभी, तो वे हम एक गार्डन बना रहे हैं, वंडरफुल गार्डन, लेकिन वैष्णव के प्रति जो अपराध है छह प्रकार के होते हैं जिनकी चर्चा आगे चलकर हम करेंगे, तो वो अपराध हम करते हैं भक्तों के प्रति, क्योंकि वैष्णव अपराध बाहर रहने से नहीं हो सकता, क्योंकि वैष्णव के बीच नहीं रह रहे हो आप, लेकिन वैष्णव के बीच रह रहे हो इसलिए क्या होगा, वैष्णव अपराध होगा। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज 108 अपने उपदेश जब लिखते हैं, तो सबसे पहला उपदेश लिखते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज, वो कहते हैं जो व्यक्ति मठ में रहना चाहता है, मतलब टेंपल में रहना चाहता है, आश्रम में रहना चाहता है, तो ही मस्ट लर्न, उसको ये सबसे पहले ये चीज़ सीखनी चाहिए, क्या, उसको सहनशीलता सीखनी चाहिए। क्या सीखना चाहिए? सहनशीलता। क्योंकि साधु का सबसे, साधु बिना सहनशीलता के वो साधु नहीं है। हाँ, तो हम साधु बनना चाहते हैं या आश्रम में या मठ में रह रहे हैं, तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि जो पहला गुण होना चाहिए तो वो सहनशीलता हमें विकसित करनी चाहिए। क्योंकि जब देहवती माता अपने पुत्र कपिल से पूछती है कि है बताइए, बताओ मेरे पुत्र कि साधु के क्या आभूषण है, लक्षण है, कौन साधु है। हाँ, तो सबसे पहला जो गुण कपिल देव अपनी माँ को कहते हैं वो कहते हैं तितिक्ष्वा। तितिक्ष्वा मीन्स सहनशील, टॉलरेंस। तो वो सहनशील है, पहला जो गुण है। फिर बाकी गुण कहते हैं, कहते हैं कपिल, तितिक्ष्वा कारुणिका सूर्यदा सर्वदेहिना आजाद शत्रवा शांता साधुना साधु भूषणा। ये उसके आभूषण है, अलंकार है, गहने हैं जो एक साधु धारण करता है। सबसे पहला होता है उसका सहनशीलता, कारुणिका दयालु होता है, सुहृद होता है, सबका हित चाहता है, मित्र होता है, आजाद शत्रुवा, उसका उसके द्वारा कोई शत्रु नहीं है लेकिन दूसरे उसको शत्रु मानते होंगे, लेकिन उसके हृदय में कोई उसका शत्रु नहीं है। तो ऐसे कई गुण कपिल देव कहते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि पहला ये गुण है कि टॉलरेंस, हम एक साथ रहते हैं वैष्णव भक्तों के बीच, ये सहनशीलता बहुत आवश्यक है। तो ये जो बैड एसोसिएशन है वो डेंजर है। जैसे अजामिल थे, अजामिल को कैसे बैड एसोसिएशन हुआ? देख रहे थे, जंगल में गए यज्ञ के लिए लकड़ी लाने, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भेजा, और वहाँ गए और देखा शूद्र और शूद्रानी को। और मतलब कई प्रकार से हम इनसे सीख सकते हैं कि जैसे ही ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि आश्रम चेंज क्यों करता है? एक ब्रह्मचारी, दो ब्रह्मचारी होते हैं जैसे हमने चर्चा की थी। एक है नैस्तिक ब्रह्मचारी जो पूरे जीवन गुरु की सेवा करना चाहता है, जैसे मध्वाचार्य थे, पूरे जीवन कोई क्योंकि कृष्ण की सेवा में इतना एंगेज, इतना आनंद आता था, उनको आवश्यकता नहीं पड़ी गृहस्थ आश्रम में जाने की। कृष्ण सेवा इतनी है, बाकी और की सेवा करने की क्या आवश्यकता है, फुल्ली एंगेज। तो जब क्यों बनता है उपकुर्वान ब्रह्मचारी? एक है नैस्तिक ब्रह्मचारी और सेकंड हमने चर्चा की थी उपकुर्वान ब्रह्मचारी। तो यदि अभी हम सब ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं ब्रह्मचारी जीवन में, और यदि ये तीसरी चीज़ नहीं हो पाती उससे ब्रह्मचारी जीवन में, तो वो सोचने लगता है कि अभी मुझे एंटर करना चाहिए ब्रह्मचारी। तो फर्स्ट है श्रवणम, और दूसरा है मननम, और थर्ड है निर्विध्यासनम। निर्विध्यासनम तो निर्विध्यासनम मतलब रियलाइजेशन, अनुभव। तो पहला है श्रवणम, यदि वो प्रॉपरली नहीं सुनता तो फिर वो मनन भी नहीं कर सकता। तो जो हम चीज़ें सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उनका मनन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मनन मतलब चिंतन करना चाहिए। मनन करना चाहिए। सोचो आपने आज अजामिल के बारे में सुना आपने स्टोरी, क्या सोचे आज आपने भागवतम क्लास में लॉर्ड चैतन्य का वो लीला सुनी, किस प्रकार श्री चैतन्य देव ने अपने गुरु ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त की थी, कैसे वो गया में मिले थे। तो यदि हमने सुना है लेकिन हम मनन नहीं करते हैं तो फिर रियलाइजेशंस नहीं आते। तो मनन करना चाहिए कि किस प्रकार से लॉर्ड चैतन्य मिले। हाँ, वो राइस का दे रहे थे ना, उन्होंने कहा था आधा आधा, तो उन्होंने पूरा दिया अपने गुरु के लिए, आपने आपको मूर्ख समझ रहा था। तो इस प्रकार से हम जो सुनते हैं उस पर मनन करते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में फिर हमें रियलाइजेशंस आने शुरू होते हैं। तो रियलाइजेशंस आते हैं तो फिर हम फिक्स हो जाते हैं ब्रह्मचारी जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में। अन्यथा क्या होता है कि हम सुनते हैं गृहस्थ जीवन इज हॉरिबल, वुमन मीन्स हॉरिबल है, हॉरिबल 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 और हॉरिबल। तो श्री जो है वो हॉरिबल है, और मतलब कितना डिफिकल्टीज हैं। आप अपने जो सुपेरियर है उनके इंस्ट्रक्शन में नहीं रहना चाह रहे हैं, डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहते हैं, तो आपको श्री के डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा घर में, है कि नहीं? हस्बैंड इज लाइक डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, पहुंचे लिस्ट लेकर, क्यों नहीं अभी टेलीविजन आया कलर घर में, क्यों वॉशिंग मशीन नहीं पहुंचा अभी तक, गर्मी आ गई, एसी नहीं है, कूलर पुराना, फेंक दो इसको। तो ये चीज़ें जब ब्रह्मचारी डिस्कस करता है और भागवतम में पढ़ता है कितना भयावह जीवन है, सुनता है लेकिन मनन नहीं करता प्रॉपरली, तो फिर रियलाइजेशन से होते नहीं है, तो उसको लगता है नहीं अभी रियलाइजेशन करने के लिए मुझे क्या होना चाहिए, एंटर करना चाहिए, और वो एंटर करता है और तब उसको रियलाइजेशन आने शुरू होते हैं, तब पूरा उसका बॉयल हो जाता है, बॉयल हो जाता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सुने प्रॉपरली, हैव टू नो रियली, ईगर होना चाहिए, हाँ भागे और सुने प्रॉपरली क्लासेस को, स्टडी करें, और जो सुनते हैं स्टडी करते वो हर एक चीज़ पर मनन करें हम, और मनन करते जब सेवा में लगते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, तो फिर आपको रियलाइजेशन आने लगते हो। स्त्री को देखने मात्र से आपके हृदय में रियलाइजेशन, हाँ ही हॉरिबल है, कितना कष्ट है उसका शरीर से बना है, तो फिर कोई अटैचमेंट नहीं रहता, कोई आकर्षण नहीं रहता उस भौतिक जीवन के प्रति। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है तीन चीज़ें, और इसलिए हमें भक्तों को मिलके डिस्कस करना चाहिए, हम सुनते हैं और नोट्स बनाना चाहिए, बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम क्या है, कलयुग मेमोरी है ना, कलयुग मेमोरी और कलयुग ब्रेन, जो हमारी याददाश्त है कलयुग के, और ब्रेन को क्या कहते हैं, दिमाग, मस्तिष्क, वो क्या है, स्ट्रांग नहीं है, भूल जाते हैं, इसलिए आवश्यक है, तभी रियलाइजेशन आएंगे। तो ये आजम मिला ने ऐसे ही किया था, आजम मिला बैड एसोसिएशन क्या देखा, देखने से मनन करना शुरू कर दिया, हाँ ओ मेरी भी पत्नी होनी चाहिए मुझे भी, उसने जब देखा शूद्र और शूद्रानी एक दूसरे को आलिंगन कर रहे जंगल में, तो इसको भी वैसे होने लगा, तो यहाँ घर में आकर इतना सोचने लगा, चिंतन करने लगा, और रिवील नहीं किया किसी के पास उसने अपनी समस्या, हाँ ब्राह्मण बॉय था वो एक प्रकार से, और फिर वो भी उस जो सिचुएशन है उसमें गिर गया, और उसी वेश्या से वो शादी कर लेता है, और उससे 9 या 10 बच्चे जन्म पैदा करता है। तो इस प्रकार से ये है कि जो बैड एसोसिएशन, हाँ फिर दोनों नावों में पाव रखना, मतलब ना स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहा है ना मटेरियली आगे बढ़ रहा है, हाँ तो इस कारण से भी हम स्पिरिचुअल लाइफ से गिर जाते हैं। और एक वैष्णव अपराध की बात की थी हमने, क्योंकि वैष्णव अपराध करते हैं तो क्या हो जाता है, कृष्ण बहुत दुखी हो जाते हैं उस व्यक्ति से, और कृष्ण ऐसा स्टेटमेंट पढ़ा था मैंने कि कृष्ण स्वयं जो अपराधी है उसके हृदय में इंजेक्ट करते हैं मटेरियल डिजायर्स को, क्या करते हैं, मटेरियल डिजायर्स को इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि कृष्ण नहीं दे सकते हैं, मेरे वैष्णव भक्त के प्रति अपराध कर रहा है आसुरी, हाँ तो वैष्णव अपराध करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे सारे आध्यात्मिक जीवन में पड़ता ही है, लेकिन दो चीज़ें प्रमुखता से, एक भौतिक इच्छाएं बहुत बढ़ती है और स्त्रियों के प्रति आकर्षण हमारे हृदय में तीव्र हो जाता है वैष्णव अपराध से। हाँ दो, एक तो भौतिक इच्छाएं बढ़ती है और दूसरा स्त्री और धन के प्रति आकर्षण बहुत तीव्र हो जाता है हमारे हृदय में। तो कृष्णा, क्योंकि कृष्ण को अपने भक्त बहुत प्रिय है, हाँ तो कृष्ण इंजेक्ट कर देते, फिर वो नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान कहते ना साधवो हृदयो मह्यम, कि साधु मेरे हृदय में निवास करता है, कृष्ण के हृदय में आप देखोगे कौन है, साधु निवास करते भक्त, और साधु नाम हृदयम तो हम, और भक्तों के हृदय में भी कृष्ण वास करते हैं, तो कैसे कृष्ण सहन कर सकते हैं, हाँ तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, नरोत्तम दास ठाकुर की, हे वैष्णव ठाकुर आपके हृदय में तो सदा गोविंद निवास करते हैं। इस प्रकार से हमें ये कुछ ऐसे बेसिक क्या कहते हैं पॉइंट्स थे, हाँ जिनसे हम जान सकते हैं कि हम इन चीज़ों से हमारा आध्यात्मिक रूप से पतन होने लगता है, आध्यात्मिक रूप हम आध्यात्मिक जीवन को ये करते हैं। खो बैठते हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है। और इससे महत्वपूर्ण क्या है कि लैक ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, ईमानदारी का दूसरा वर्ड उस दिन सत्यता ने उस दिन आपने बोला था ना एक वर्ड ईमानदारी का, ऑनेस्टी का, वफादार वो उर्दू है, मतलब एक्चुअली हम अपने एक्टिविटीज में ऑनेस्ट हो, ऑनेस्ट ये नहीं होता तो बाकी चीज़ें क्रूकर्डनेस हमारे हृदय में तुरंत आ जाता है। हाँ वफादार होना चाहिए, मतलब ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार चलो ठीक है मुझे आई डोंट नो ऑनेस्टी समझ गए होंगे आप, ईमानदार होना चाहिए, लैक ऑफ ऑनेस्टी। तो डिसऑनेस्टी मीन्स लैक ऑफ, जब हम ईमानदार नहीं है तो उसका मतलब हम पाखंडी हैं, ऐसे होगा ना। अनदर नेम ऑफ डिसऑनेस्टी इज हिपोक्रेसी, ऐसे कुछ सेंटेंस मैंने पढ़ा था, इंग्लिश नहीं आती लेकिन आई एम ट्राइंग। तो लैक ऑफ ऑनेस्टी मीन्स हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी मतलब पाखंड। हम ईमानदार नहीं हैं तो इसका मतलब हम क्या है, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। ईमानदार मतलब जो एक्टिविटीज हमें दी जा रहे हैं हम बिल्कुल उसी को पालन करें। और चर्चा कर सकते हैं स्क्रिप्चर्स में और एग्जांपल्स है अलग अलग गुणों पर हम कभी डिस्कस करें। हाँ लेकिन अभी हम चलो अलग सब्जेक्ट हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत आवश्यक है कि कभी भी आध्यात्मिक जीवन में हृदय में कोई भी ऐसी जो हमने पॉइंट चर्चा किए हैं इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी समस्या आती है तो हमें अपने सुपीरियर से चर्चा करनी चाहिए और डरना नहीं चाहिए। और हमारे प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का सवाल होता है ना कई बार, सोचते हैं कि मैं तो इतना अच्छा भक्त हूँ, मैं इतना सालों से हूँ तो मैं क्यों रिवील करूँ, लेकिन ये बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने पिछली बार वो स्टोरी सुनाई होगी आपको, एक सन्यासी है ना, सन्यासी की स्टोरी सुनाई थी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बाकी भक्त नहीं थे। तो मूवमेंट में एक विदेश अमेरिका में एक कम्युनिटी थी, तो वहाँ एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने सन्यास ले लिया और वंड बहुत अच्छे प्रचारक थे, वो सन्यास ले लिया उन्होंने, सन्यासी बने, बहुत अच्छा कीर्तन प्रचार सब एक्टिविटीज़ करते थे। लेकिन उनकी एक कमी थी, क्या कमी थी, उनको स्त्रियों का जो फेस है वो देखना बहुत अच्छा लगता था, बस ये एक प्रॉब्लम था। तो वो बहुत इस सन्यासी मीन्स इज प्रीचर एक्चुअली, फुल फ्लेज प्रीचर ना, जहाँ जाए इंतजार, सन्यासी आते तो कैसे उत्साह आता है, हमें नाचने लगते, गाने लगते, सुनने लगते, सेवा करने लगते, कोई सन्यासी हमारे बीच में है। तो ऐसे सन्यासी थे, तो लेकिन उनकी एक कमी थी कि उनको जो स्त्रियों के जो फेस है वो देखना बहुत अच्छा लगता था। तो ब्रह्मचारी आश्रम में रहते थे, वो ब्रह्मचारियों के साथ नए नए सन्यासी थे, यंग सन्यासी। तो क्या हुआ कि रात को उनको नींद नहीं आती थी, देखते कि दिस सिंपल ब्रह्मचारी स्लीपिंग वंडरफुली, कोई चिंता नहीं है, सिंपल नॉर्मल ब्रह्मचारी आराम से सो रहे हैं और मैं सन्यासी, मुझे अभी तक नींद नहीं आ रही है, और सारे जो माताओं के जो फेस हैं वो सामने घूम रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या हुआ, इन्होंने अभी क्या करो, मैं किसी को बताऊँ तो मुझे लगेगा मैं तो सन्यासी हूँ, कैसे बताओ। उन्होंने ट्राई किया अपने कोई ऐसे फ्रेंड से, लेकिन उन्होंने कहा टॉलरेट करो, कुछ दिन आओ, लेकिन इनसे टॉलरेट नहीं हो पा रहा था। और जैसे प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्मचारी मीन्स उसको गुरु की सेवा में इतना थक जाना चाहिए जहाँ बैठे वहाँ उसको नींद आ जानी चाहिए। ब्रह्मचारी को वेट नहीं करना चाहिए कि नींद आ रही है, मतलब इसका मतलब नहीं कि जब में नींद आ जाए भागवत में आ जाए जहाँ भी बैठे नींद आए नहीं। तो मतलब हम रात को वेट करते हैं, निद्रा देवी आ जाइए, उसका मतलब डिफिकल्टी है। हाँ क्योंकि कई सारे आध्यात्मिक चिंतन नहीं हो रहा है उस समय और भौतिक चिंतन हो रहा है, क्योंकि नींद किसे नहीं आती, योगी रोगी और भोगी तीनों को नींद नहीं आती। एक योगी योगी इतना कॉन्शियस, वो सोचता है सोना मीन्स वेस्ट करना समय को, कृष्ण की सेवा कर सकता मैं, भक्ति योगी सोचता है। हाँ, योगी को नींद नहीं आती, इसलिए वो एक दो घंटा सो जाता है, बस बाकी समय कृष्ण सेवा, कृष्ण कथा, हरि नाम लेते रहता है जोर जोर से,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और जो भोगी है, जो भोग करना चाहता है, इस संसार को भोगना चाहता है, तो इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों में लगता है, उसको नींद नहीं आती, वो योजना बनाता है। हाँ, और जो रोगी है, हाँ, रोगी जो बीमार हो चुका है, उसको भी नींद नहीं आती, कभी हाथ दर्द हो रहा है, कभी दांत दर्द हो रहा है, कभी गर्दन दर्द हो रही है, कभी कमर दर्द हो रही है ना। जब हम बीमार होते हैं तो ठीक से नींद नहीं आती, आती है अमित प्रभु? नहीं आती। तो मतलब कहने का क्या है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, तो लेकिन प्रभुपाद कहते हैं एक्चुअली ना कि ब्रह्मचारी मीन्स फुल्ली एंगेज हो प्रॉपरली, तो रात को सोते ही वो बस एक सेकंड में वो नींद, उसको डीप स्लिप में चला जाए और वो सपनों में ना चला जाए। एक्चुअली अच्छी निद्रा का मतलब है डीप स्लिप। हाँ, तो फिर हमें फिर ना रेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, शरीर में स्ट्रेंथ मिलती है। आज हम रात भर सपनों में रहते हैं तो फिर नींद आने लगती है जपा में और बाकी एक्टिविटीज़ में। तो ये जो सन्यासी थे उनको नींद नहीं आ रही थी, तो ये उनकी डिफ़िकल्टीज थी। लेकिन उन्होंने क्या क्या करो, तो लेकिन रियली तो अभी इसे समझ सकते कि कोई चाहिए। हाँ, रिवील करने के लिए। हाँ, जिनके पास जाए तो सन्यासी ने सोचा क्या करूँ अभी मैं, तो उन्होंने फिर अपनी सारी कम्युनिटीज़ को बुलाया, डिवोटीज़ को, और उनके सामने ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और कहने लगे देखिए मैं कितना ये हूँ, है ना, क्या कह सकते हैं, पतित हूँ, या जो भी उन्होंने कहा होगा, पता नहीं क्या कहा। तो लेकिन उन्होंने कहा मुझे क्षमा करिए कि मुझे आपके एसोसिएशन में रखिए। हाँ, तो इस प्रकार से इस घटना से हम सीख सकते हैं कि ये कितना आवश्यक है आध्यात्मिक जीवन में, कि हमें रियली आगे बढ़ना है, नज़दीक जाना है कृष्ण के, तो हर समय हम अपनी जो समस्याएं हैं, जो हमसे सीनियर्स हैं, अब उनसे हम कॉन्फिडेंस, जिन पर अच्छे से फैत है हमें, उनके पास क्या करें, हम अपने आध्यात्मिक समस्या को रिवील करें, तो ये आवश्यक है। और ये भी नहीं कि हर एक के पास रिवील करना शुरू कर दें, हाँ वो भी नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे देखा गया कि एक जगह एक डिवोटी थे, उन्होंने अपनी समस्या किसी को बताई, वो भागवतम क्लास दे रहे थे और वो बेचारा सुन भी रहा था भागवतम क्लास में, उसकी सारी जो प्रॉब्लम है वो भागवतम क्लास में बता दी, तो कितना बड़ा उसको ये। तो और जो सुन भी रहा है उसका, वो व्यक्ति शौकाबसर के समान होना चाहिए। क्या है शौकाबसर, होता है ना, क्या टू व्हीलर चलाते, तो कई बार क्या कहेंगे उसका, नहीं शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं ना, जो भी कहते हैं आप। तो जब हम चलते गतिरोधक आता है तो स्पीड भी हो और गड्ढा भी हो तो हमें महसूस नहीं होता, जैसे बड़े बड़े कारों में होता है, शॉक को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ऐसे डिवोटीज होने चाहिए, नहीं तो उसने कोई शॉक देने वाली न्यूज सुनी सुनाई और ये डिवोटी ऑब्जर्वर नहीं, क्या कहते हैं, वो चीज़ को ऑब्जर्व करने वाला नहीं है, ये भी खुद ही भयानक भीख है, तो ये भी इसका भी भौतिक चिंतन शुरू होने लगेगा। तो जो डिफिकल्ट चीज़ें हैं, हाँ, तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि ऐसे डिवोटीज के पास, हाँ, जो ट्रस्ट वर्ती हैं, हाँ, उनके पास हमें ये करना चाहिए, रिवील करना चाहिए, और हमें भी ट्रस्ट वर्ती बनने का प्रयास करना चाहिए, हाँ, आगे, क्योंकि इस मोमेंट को ऐसे भक्तों की आवश्यकता है। और भी एक रीज़न है जिससे कई बार हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में गिरते हैं, जब हम ये दिखावा करते हैं कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, हाँ, स्पेशली कॉन्ग्रीगेशन के सामने, आप लोग तो नहीं हैं, लेकिन हम जब प्रचार में कभी जाते हैं, कॉन्ग्रीगेशन प्रीचिंग लेक्चर दे रहे, बाहर जाकर वीकली प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हाँ, तो आप यदि शो करना शुरू करते हैं, क्योंकि डिवोटीज बाहर कॉन्ग्रीगेशन आपको बहुत आदर सम्मान देता है, आपको लगने लगता है कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, तो फिर आपकी गिरावट उसी समय शुरू हो जाती है। तो आपने आपको प्योर डिवोटी जैसा शो नहीं करना है। जैसे वैष्णव एटिकेट की बात आती है तो वैष्णव एटिकेट में कहा जाता है कि डेप्थ ऑफ ए वैष्णव इज जज बाय हिज बिहेवियर, एक प्रकार से कि कितना डेप्थ है वो उसके बिहेवियर या आचरण से वो प्रकट हो जाती है। जैसे भक्ति चारू महाराज ने लेक्चर दिया था इस पर वैष्णव एटिकेट के ऊपर, तो वो कह रहे थे कि जैसे कोई व्यक्ति धनवान है, हाँ तो कैसे पता चलेगा ये धनवान है, हाँ उसके पास धन के अनुसार चीज़ें होगी, बेस्ट कार होगी, बेस्ट हाउस होगा, वो कोई फ्लैट में नहीं रहेगा, अपना बंगलो होगा और बेस्ट नो चीज़ें होगी, कपड़े होगी उसके, वैसे सारी चीज़ें धन के अनुसार। तो वैसे ही जो डिवोटी कृष्ण भावना में जितना अधिक ये है, क्या है, रिच है, रिच मतलब प्योर डिवोशन से, डिवोशन से रिच है भक्ति जिसके हृदय में है, हाँ डेप्थ है भक्ति में, वो मैच्योर है या हृदय में उसके अच्छा भक्ति है, तो उतना ही स्वाभाविक रूप से उसके आचरण से, उसके वाणी से, उसके चलने से, उसके बिहेवियर से क्या होगा, वैष्णव एटिकेट्स प्रेजेंट होंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, वैष्णव एटिकेट के लिए और कोई चीज़ें हमें पढ़ने देखने की आवश्यकता ना है, आवश्यकता नहीं है, केवल क्या ऑब्जर्व करेंगे, श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद का पानी पीना इतना एब्सोल्यूट था कि डिवोटीज ऐसे देखते थे, प्रभुपाद लेते थे, अब पहले पढ़ेंगे लीला में आपको पता चलेगा हर एक एक्टिविटी कैसे चलते थे, वीडियोस देखा प्रभुपाद जब चलते इज लाइक किंग, और उतने ही हम्बल। तो जब बोलते थे किसी भी डिवोटीज से, चाहे हाईली, क्योंकि जो उन्नत भक्त है उसका लक्षण है कि वो छोटे से छोटे भक्त को भी प्रसन्न कर देता है और उन्नत से उन्नत भक्त को भी अपनी सेवा से प्रसन्न करता है, तो इसकी ये क्वालिटी होती है उन्नत डिवोटी, नए से नए भक्त को भी वो खुश हो जाता है, खुश करता है अपने उसके स्वभाव से, और जो उन्नत से उन्नत भक्त है उनको भी प्रसन्न करता है अपनी सेवा और शुश्रूषा से। इस प्रकार से जो श्रील प्रभुपाद हैं अपने आचरण से सारे एक्टिविटीज सिखाते हैं कि क्या वैष्णव आचरण होना चाहिए, क्योंकि वैष्णव एटिकेट मीन्स कि पूर्णतया मोड ऑफ गुडनेस में एक्ट करना, वो है वैष्णव एटिकेट। क्या नहीं नहीं एक्चुअली दिखना मतलब शो का मतलब जैसे आप प्रीचिंग में जा रहे हैं, मतलब जानबूझ के शो ना करें हम चीज़ों को, जैसे अब नेचुरली जब प्रीचिंग में इन्वॉल्व होंगे ना कॉन्ग्रीगेशन वगैरह, कई बार ये ऑब्जर्व किया गया है और मैं भी अपना पर्सनल रियलाइजेशन है, शुरुआत से मैं बाहर जाता हूँ तो कई बार लगने लगता है कि मैं शुद्ध भक्त हूँ तो लेकिन एक्टिविटी हमारी सतगुण में हो, हाँ सतगुण के जो एक्टिविटीज़ हैं, तो बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए वह श्रील प्रभुपाद। इसलिए डिवोटीज को कहा जाता है कि शुरुआत के दिनों में हम शुरुआत में प्रभुपाद स्मॉल बुक्स पढ़े, मीडियम बुक्स पढ़े, बिग बुक्स पढ़े और फिर भागवतम भगवद्गीता पढ़े और साथ साथ प्रभुपाद के बायोग्राफीज पढ़ना शुरू करें। इस प्रकार से प्रभुपाद की बुक्स को हमें पकड़ना चाहिए। जब भागवतम आप पढ़ना शुरू करें उसके साथ साथ आप प्रभुपाद के बायोग्राफीज रीड कर सकते हैं, जैसे अलग अलग ट्रांसलेटेड डायरीज हो गया कुछ कुछ, लेकिन सबसे पहले भक्ति वेदांत तात्पर्य को आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए प्रभुपाद की जो बुक्स हैं, फिर बाकी हम शुरू करें। इस प्रकार से तब हम प्रभुपाद को फिर जान सकते हैं और हमें चर्चा भी करते रहनी चाहिए प्रभुपाद की एक्टिविटीज़ की। हाँ ये भी है कि जैसे जैसे हम कृष्ण भावना में आगे बढ़ते हैं या फिर कई साल बिताते हैं, सोचो 10-15 साल हो गए आपको मूवमेंट में यहाँ सेवा करते हुए, मोर यू गो हायर देन यू बिकम सेपरेट आइलैंड। जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आप एक सेपरेट आइलैंड हो जाते हो। एक्चुअली देखा गया है ना, जैसे आप 15 साल 20 साल बिताते हो तो बाकी भक्तों में से आप अलग ही हो जाते हो धीरे धीरे। हाँ तो ये भी एक डेंजर है, हाँ एक माया का कॉर्नर है। तो अपने आपको हम हर समय भक्तों के बीच में रखें, चाहे हम कितने भी साल हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, तभी भी हम भक्तों के बीच श्रवण करें, कीर्तन करें, सेवा करें, तो हम अलग लिविंग एंटिटी नहीं होंगे। क्योंकि अलग आइलैंड बना लेंगे तो फिर वो आइलैंड को माया क्या करेगी, डुबा देगी अपने पानी से। तो ये चीज़ मेनली, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि जो भी हमने रीज़न शुरुआत में लिखे थे कि इन इन चीज़ों से आध्यात्मिक जीवन से वो भक्त चला जा सकता है या वो गिर सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, ये प्रॉब्लम आने से पहले वो रिवील करें, अपना हार्ट ओपन करें, तो फिर ये संभावना नहीं है। क्योंकि इस्कॉन में शुरुआत के दिनों में क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद थे तो, और डिवोटीज भी इतने सेवाज और प्रोजेक्ट्स और ना डिस्ट्रीब्यूशन, इन चीज़ों में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि उन वो टाइम ही नहीं था अपना हार्ट ओपन करने के लिए, चर्चा करने के लिए, और कोई नहीं भी था एक प्रकार से देखा जाए। प्रभुपाद थे तो सबसे पहले है कि हम अपने गुरु के पास हार्ट ओपन करें। लेकिन हर समय हम गुरु को नहीं मिल सकते, स्पिरिचुअल मास्टर को, क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर मीन्स क्या, कि जो भी ऑब्स्टेकल्स हमारे पास आती हैं, तो लेकिन कई बार भक्त सोचता है कि मेरे जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो तो अराउंड द वर्ल्ड है, वो ट्रैवल कर रहे हैं प्रीचिंग एक्टिविटीज से, और दूसरी बात ये भी सोचता है कि मैं तो अपनी छोटी प्रॉब्लम है, क्यों उनके सर पे ये और बर्डन करूँ मैं, हाँ। तो लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि गुरु हमने इसीलिए ही स्वीकार किया है, आध्यात्मिक जो गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, क्योंकि आपके जो आध्यात्मिक, क्योंकि गुरु मीन्स कौन है, डॉक्टर है। तो डॉक्टर के पास अब आपने अपनी रिवील नहीं करोगे बीमारी, तो क्या होगा, अब डिजीज सिचुएशन में रहोगे। तो लेकिन जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं वो तो ट्रैवल कर रहे हैं और मूवमेंट को अंदर उनको फैला रहे हैं, तो क्या करें फिर ऐसी सिचुएशन में। तो इसलिए हमें आवश्यकता होती है एक जिनसे हम रेगुलर शिक्षा लें, इंस्ट्रक्शंस लें, हाँ, जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर को फॉलो करते हुए उन ऐसे डिबूटी से हम हमारा संबंध स्थापित करें और उनसे हम रेगुलर इंस्ट्रक्शन लें, तभी हम फिर बच सकते हैं, अन्यथा मुश्किल है। क्योंकि हमें चाहिए डे टू डे वही हो जो हमें क्या करे, स्टिक लेके रहे हमारे पीछे, रीडिंग, चैंटिंग, डांसिंग, फास्टिंग, फीस्टिंग, स्लीपिंग, हाँ, सेवाज, हाँ। नहीं तो क्या है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें स्वाभाविक, हमारा स्वभाव ही है भूल जाना, हाँ, कुछ सुन लेते, पढ़ लेते, फिर ऐसे हो जाते, फिर ढीले हो जाते ना। तो नीड समवन पुशिंग, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है, लेकिन इसको दूसरे वर्ड में पुशिंग मूवमेंट कहते हैं। मतलब यू शुड पुश ईच अदर, क्या करो, पुश ईच अदर, आप दूसरों को धक्का लो, आपको कोई और धक्का देने वाला है, तो कृष्ण की ओर सब हम जाएंगे हर समय। तो इसलिए ऐसे डिवोटी की आवश्यकता हमारे जीवन में है, जो हमें हर समय क्या करें, डे टू डे हमारे आध्यात्मिक जीवन जिनसे हम शेयर कर सकते हैं या प्रॉब्लम प्रेजेंट करें और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में। अन्यथा क्या होगा, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी जो स्थिति है उस पेड़ के समान होगी, जो बाहरी रूप से, कई बार कई पेड़ होते हैं ना, बाहरी रूप से ये दिखते हैं हरे भरे, लेकिन अंदर क्या होते हैं, खोखला, क्या कहते हैं उसको, खोखला पेड़ होता है। तो हम बाहरी रूप से बहुत अच्छे, शेविंग, तिलक, कंठी, ड्रेस, लेकिन अंदर खोखला है वो, जो ऐसे हालत होगी। तो ये चीज़ें हैं जिसके लिए ब्रह्मचारी को सावधान रहना चाहिए, और इन चीज़ें हैं जिनसे हम गिर सकते हैं, क्योंकि गिर अचानक कोई छोड़ नहीं देता कृष्ण भावना, या गिरता नहीं है बड़े बड़े धरातल पर। तो इस काम में देखा गया, बिग बिग डिवोटीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रीचर्स, सन्यासीज, हाँ, कितने बड़े बड़े लेवल में, इस काम इज बिग मूवमेंट, इतने इतने सालों के बाद आध्यात्मिक जीवन से चले जाते हैं। तो ऐसे नहीं कि अचानक कुछ हो गया, सबसे पहले क्या होता है, पेड़ पेड़ कैसे दिखाई देता है आपको इतना बड़ा? पहले क्या होता है? सीड है ना, बीज। तो बीज जहाँ गिर रहा है, मतलब बीज सीड शुरू हो गया, तो बीज बीज अंकुरित होने लगता है ना, धीरे 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 पेड़ बन जाता है, और फिर पेड़ बनता है तो फिनिश। तो वैसे ही कोई ऐसी जो चीज़ हमारे हृदय में अभी सीड फॉर्म में एक प्रकार जैसे जो ऐसे थॉट्स हैं, मटेरियल हैंकरिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो ये अभी बीज के समान है, लेकिन वो अंकुरित होने से पहले वो बीज को हमें क्या करना है? फेंकना है डिवोटीज की हेल्प से। तो ये आवश्यक है, अन्यथा क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा जो ब्रह्मचारी जीवन है। तो ये सीड फॉर्म क्या है? एक है एक्ट विम्सिकली। विम्सिकली को क्या कहेंगे? एक्ट विम्सिकली, मनमाने ढंग से एक्ट करना, अपनी इच्छा के अनुसार चलना। और कॉन्टैक्ट टू मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत से संबंध रखना, फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चों से मिलते रहना, दिस इज नॉट ब्रह्मचारी जॉब। बच्चे को ना बहुत ब्रह्मचारी बच्चों से दूर, बच्चों से ना, बच्चे अपनी माता पिता के पास ही रहने दीजिए, हम अलग। हाँ, तो ये सब एक प्रकार से ये सीड्स हैं। लिव अलोन, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन, और ये भी आवश्यक है कि हमें अपनी कमजोरी जाननी चाहिए, और लेकिन प्रयास होना चाहिए कि उनको मैं फुलफिल नहीं करूँगा। हाँ, फुलफिल नहीं करूँगा। नो आवर वीकनेस एंड डोंट ट्राई टू फुलफिल देम, कीप लॉन्ग डिस्टेंस। तो कुछ हमारी वीकनेसेस होती हैं, हर एक को पता है कि नहीं मेरे क्या क्या वीकनेसेस है, तो कभी हमें लिखना भी चाहिए। और वी हैव टू वर्क, वीकनेस को क्या कहेंगे हिंदी में? कमजोरी। वीकनेस कमजोरी, हाँ हाँ। तो जो नहीं, कमजोरी का मतलब जो चीज़ हमें यहाँ उस कमजोरी की बात चल रही है जो कृष्ण से हमें क्या करें, डाइवर्ट करें या दूर करें, वो कमजोरी। हाँ, तो उन हमें पता है कि ये मेरी कमजोरी है, तो उससे हमें डोंट ट्राई टू फुलफिल देम, उनसे दूर रहना है। हाँ, उनको ये नहीं करना है। जिन सोचो कि क्या उदाहरण दे सकते हैं कि कोई कमजोरी और उसको फुलफिल नहीं करना, दूर ही रखना, मतलब डेंजर से कैसे सकते हैं? सोचो, हाँ, मुझे स्त्रियों को देखना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और कोई माता जी जा रहे हैं और मैं देखता हूँ, लेकिन पता है कि मेरी ये कमजोरी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? फुलफिल नहीं करना चाहिए मेरी मन की इच्छा को। हाँ, जैसे गीता की जो सेकंड चैप्टर के श्लोक हम पढ़ रहे हैं, उसमें आता है कि वायु नाव में अम्बस्य, कि वायु क्या, वायु जैसे वो जहाज को एक ओर ले जाता है, उसी प्रकार हमारी इंद्रियाँ किसी एक ऑब्जेक्ट के प्रति फोकस होती है। हाँ, तो मन को भी ले जाती है अपने साथ। तो पता है कि मेरी ये कमजोरी है, तो मुझे तुरंत हरे कृष्णा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और दूर होना चाहिए। तो ऐसा करते रहेंगे, कीप डिस्टेंस, तो धीरे धीरे वो टेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी और बर्न हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो इस प्रकार से, हाँ, इस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो ये जो फॉल डाउन का सीड होता है, फिर वो क्रीपर बनती है और फिर वृक्ष हो जाता है, मतलब पूरी तरह से कृष्ण भावना से हम चले जाते हैं। इसलिए बहुत सतर्क होना चाहिए और हम्बल होना चाहिए हमें हर सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन हो, हम्बल एंड टॉलरेंट, बस। कभी हिल नहीं सकता वो कृष्ण भावना से, यदि हम इस प्रकार से हम बने रहेंगे। तो ये आवश्यक है कि जो ब्रह्मचारी है, हाँ, जैसे सोचो, जैसे और भी एक उदाहरण यह समझ सकते हैं कि सीड फॉर्म, जैसे हम ब्रह्मचारी का पालन कर रहे हैं और अभी हमने कई लेक्चर सुन लिए है, कई एस्पेक्ट सुन लिए है, कई प्रकार से ऊपर नीचे से चीज़ें समझ ली कि कैसे गिरता है, क्या से दूर रहना चाहिए, कि नहीं, कई दिनों से हम यही चर्चा कर रहे हैं। तो लेकिन जो ब्रह्मचारी हैं, हाँ, कई बार ये चीज़ें क्या करती हैं, हम जानते हुए भी हम करते हैं, है कि नहीं, कई एक्टिविटीज़। सोचो, एक एक चीज़ है जैसे ब्रह्मचारी जीवन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, यदि हम भक्तों के एसोसिएशन में प्रॉपरली नहीं है और सिंसियरली फोकस नहीं है अपनी साधना और सेवाज में, तो ये जो सारे सीड्स की जो चर्चा हम की वो आती हैं और वो सीड फिर ट्री बनना शुरू होती है। जैसे क्या अभी कोई अट्रैक्शन है हाँ सोचो मुझे, और फिर धीरे धीरे मेरे बाल बढ़ने लगेंगे, क्या कहाँ से शुरू होती है प्रॉब्लम, बाल बढ़ने लगेंगे, फिर बाल तो पहले शेविंग होता है ना, तो बढ़ते हैं तो फिर ब्रह्मचारी उसको मशीन से काटने लगता है, फिर और थोड़े बढ़ाता है तो कंघी लगाने लगता है, तो फिर वो छोटी छोटी के समान सारी चीज़ें बन जाती हैं, फिर उसके हाथ में घड़ी आ जाती है गोल्डन कलर की, हाँ गोल्ड वॉच और कई ऐसी चीज़ें, तो धीरे धीरे ये वृक्ष बन जाता है और फिर वो अपने आध्यात्मिक जीवन से पदच्युत हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए, इवन नॉर्मल डिवोटी भी गिर जाता है तो उसका प्रभाव नए लोगों को पड़ता है कि नहीं, कोई 7-8 साल से भक्त हैं और अभी अभी हमने ज्वाइन किया, हम देखते तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है कि ना, और सन्यासी गिर जाए तो उतना डेंजर है ना। इस प्रकार से ऐसी कई घटनाएं हुई है और हर शास्त्र में ऐसी काफ़ी घटनाएं हैं और भी आगे आगे कौन कौन से धरातल पर हम गिरते हैं, तो ऐसे कुछ रीज़न है, टाइम भी नहीं है मेरे पास। एक ऐसी घटना हुई थी इस्कॉन में कि बहुत बड़े लीडर थे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के, और जो अमेजिंग जिन्होंने प्रभुपाद के बुक्स को, वो प्रभुपाद के बुक्स का प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किंग थे वो पूरे वर्ल्ड में, जितने आप लैंग्वेजेस देख रहे हो उन्होंने लाई है। ऐसे एक डिवोटी थे, तो उन्होंने कैसे वो अपने आध्यात्मिक स्थान से गिर गए, तो वो जो नए थे वो अपने आप को समझने लगे कैसे हम गिरते हैं, तो वो जो डिवोटी थे वो अपने आप को समझने लगे कि जो नए हैं वो समझने लगे, तो उन्होंने बीच में प्रचार किया कि मैं शिवजी का बेटा हूँ कार्तिकीय, बीच में अपने आप को प्रेजेंट करने लगे मूवमेंट में 1980s के समय, हाँ कि मैं कार्तिकीय हूँ, कार्तिकीय का इनकारनेशन हूँ 1982 में, हाँ। और उन्होंने हजारों शिष्य स्वीकार करना शुरू कर दिए पूरे वर्ल्ड वाइड, वो निकलते थे तो 5-6 वीडियो कैमराज हर समय रहते थे उनके साथ, उनकी हर एक एक्टिविटीज रिकॉर्ड होती थी, वीडियोग्राफी होती थी और प्रभुपाद के बाद, और वो अपने आप को उस धरातल पर मान रहे थे और हर एक किसी को भी शिष्य के रूप में स्वीकार करते थे, क्योंकि गुरु को शिष्य के पाप लेने पड़ते हैं, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं जरूरत से ज़्यादा शिष्यों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, कर्माज लेने पड़ते हैं। जैसे मुझे याद है महाराज जी कहते थे कि दीक्षा के लिए रिकमेंड करते समय बड़ा सावधान रहना, हाँ क्योंकि महाराज जी प्रभुपाद ने कहा था कि गुरु को शिष्य के पाप स्वीकार करने पड़ते हैं, तो इस प्रकार से हर एक को शिष्य के रूप में स्वीकार कर रहे थे। और कोई और जो मेडिसिन्स हैं बीमारी के लिए ड्रग्स वगैरह ले रहे थे उसके साथ क्योर होने के लिए, और कई बार उन्होंने अपनी इच्छा भी व्यक्त की कि मुझे जाना है, छोड़ना है मुझे और मैं अपने डिसाइपल्स के साथ अलग हो जाऊंगा इस कौन से, इस प्रकार की कई ऐसी बातें उनके जीवन में आई थी। और वो फिर पैसा भी प्राप्त करते थे स्टॉक एक्सचेंज करके, हाँ स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट वगैरह, और तो इस प्रकार से अनैतिक रूप से धन प्राप्त करना कृष्ण की सेवा के नाम पर, हाँ तो ये भी एक डेंजर था। तो ऐसे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जो आध्यात्मिक जीवन से चले गए इस कौन से, तो हम कुछ ऐसी शिक्षाएं ले सकते हैं, तो उसमें कुछ उनके जीवन में 12 जो चीज़ें हैं, 12 जो चीज़ें हैं वो सीखी थी डिवोटीज ने, कि सबसे पहले है कि जो ब्रह्मचारी है उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत एडवांस हूँ और मैं कभी गिरूँगा नहीं, हृदय से, उनके जीवन से, ये उनके लाइफ स्टोरी से ये चीज़ें सीखी थी कि ब्रह्मचारी को सबसे पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत एडवांस भक्त हूँ और मैं माया में नहीं गिरूँगा, बाकी सब गिर सकते हैं। A second thing, be careful about object which we manipulate. सावधान होना चाहिए जिन ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कंटेम्पलेट करते हैं, हाँ, क्योंकि वो अपीयर हो जाते हैं आपके एन्जॉयमेंट के लिए। है कि नहीं, जैसे इसका आजा मिला का है, हिंदी में कैसे कहेंगे इसको, कि आप जो चीज़ें सोचते हो उनको बड़ा सावधान होना चाहिए। भौतिक चीज़ों को कभी आप सोचते हो तो उसके ऊपर ज़्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है हमारी एन्जॉयमेंट के लिए। और एन्जॉयमेंट के लिए मीन्स शब्द याद नहीं रख सकता क्या बोल रहे अच्छा सोचना मीन्स भौतिक चीज़ों के प्रति ये भी है। और जब हम कंटेम्पलेट करते हैं तो स्ट्रांग डिज़ायर होती है और उसी चीज़ के लिए हम भागते हैं, उसकी पूर्ति के लिए, तो कृष्ण प्राप्ति हमारा एक प्रकार से लक्ष्य नहीं होता। और थर्ड है, पुट प्रायोरिटी बिफोर वर्क, साधना, मतलब काम करने से पहले साधना को प्रायोरिटी रखो, क्या साधना को पहली प्रायोरिटी दो बाकी कार्यों से, मॉर्निंग साधना को प्रायोरिटी को क्या कहेंगे, प्राथमिकता, तो साधना को प्राथमिकता देनी चाहिए बाकी कार्यों से पहले, साधना महत्वपूर्ण होनी चाहिए मॉर्निंग। और डोंट टेक संन्यास इमैच्योरली, इमैच्योरिटी क्या बोले, संन्यास या वो तो मिलता भी नहीं अभी इस काम में, तो बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है तो मिलता ही नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें। फोर्थ है कि संन्यास लेना नहीं चाहिए इमैच्योर स्टेज में, संन्यास क्या लेंगे हम इमैच्योर धरातल पर। और डोंट एसोशिएट वुमन अलोन, क्योंकि उनके साथ हुआ था कि वो अपने जो माताएं शिष्य हैं उनसे मसाज लेते थे बीमारी के कारण, तो ब्रह्मचारी तो सावधान, हाँ, बीमार हो जाते या समथिंग, तो ऐसी आपदा ना आ जाए माताओं से मसाज लेने की। तो कहने का तात्पर्य है कि अकेले एसोसिएशन ना करें, हाँ, जो मिले ना, जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज के बारे में कहा जाता है, उनको मिलने कौन आए थे, उनके डिसाइपल थे जो ओबीएल कपूर हैं, प्रभुपाद के गुरु भाई, उनकी वाइफ, वो कहते थे महाराज, गुरु महाराज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आपके भक्ति सिद्धांत महाराज के थे, नहीं तुम अपने हस्बैंड के साथ मेरे साथ बात करो, अकेले नहीं। हाँ, तो ये एक हमारा ये होना चाहिए ब्रह्मचारी का। और बाकी चीज़ें तो काफ़ी ये हैं। और ये होना चाहिए वी आर नॉट डूअर, मतलब कर्ता की भावना आती है ना कि मैं ही करता हूँ, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, तो ये भावना का भी हमें त्याग करना चाहिए। और डोंट क्रिटिसाइज इस्कॉन और इस्कॉन डिवोटीज, हाँ, ये भी एक डेंजर है, डोंट निंदा नहीं करें इस्कॉन के कार्यकलापों की और भक्तों की, क्या बहुत ऐसी कोई अवस्था है तो नेचुरली हर टू एक्सेप्ट में नर्स की कुछ सेवा, लेकिन फिर भी वहाँ एक डिवोटी होना चाहिए और आवश्यक है डिवोटी। हाँ, बी हम्बल, डोंट थिंक मोर इंटेलिजेंट देन प्रभुपाद, सुपीरियर से इस गुरु, आपने स्पिरिचुअल मास्टर या सुपीरियर, बी हम्बल, डोंट थिंक मोर इंटेलिजेंट देन प्रभुपाद, मतलब विनम्र रहो ये मत सोचो कि मैं प्रभुपाद से भी ज़्यादा क्या हूँ, बुद्धिमान हूँ, या अपने आध्यात्मिक गुरु से भी ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। तो ये भावना भी हमारे पतन के कारण होती है। ये बहुत लंबा डिस्कशन है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं। तो इस प्रकार से भक्त को सावधान होना चाहिए और हर समय हमें शेल्टर लेना चाहिए वैष्णवों का, और सिंसियरली चांट करना चाहिए
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो हम मूवमेंट में है तो हर समय हमें मूव करना चाहिए। मूवमेंट मीन्स मूव करना, मूवमेंट मूवमेंट मीन्स मूव करना। नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत थिंग आवश्यक है ध्यान। हाँ, तो ये दोनों चीज़ें, दोनों आस्पेक्ट आवश्यक है जानना हमें आध्यात्मिक जीवन में जुड़ा होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव आस्पेक्ट्स, दोनों आस्पेक्ट। तो लास्ट टाइम मैंने वो उसका उदाहरण दिया था महाभारत के, ऋषि शृंग ऋषि या समथिंग, उनके बारे में आता। ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। निर्विध्यासन, रियलाइजेशन, निर्विध्यासन, निर्विध्यासन। ओ, आज तो बहुत लेट हो गया
है। कोई क्वेश्चन है?